नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फॉर डमीज, जहाँ मिशेल क्लावेरी और सिद्रिक नोत्रेदाम की शुरुआती पाठकों के लिए लिखी गई व्यावहारिक परिचयात्मक पुस्तक है। इसका विषय जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और कंप्यूटिंग के संगम पर बनने वाला वह क्षेत्र है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बड़े डेटा को खोजा, व्यवस्थित और समझा जाता है। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को भारी गणित, जटिल प्रोग्रामिंग या स्थानीय सॉफ्टवेयर स्थापित किए बिना ऑनलाइन जैविक संसाधनों का उपयोग सिखाना है। दूसरा संस्करण डेटाबेसों, वेब आधारित प्रोग्रामों और उपलब्ध जीनोम सूचनाओं के विस्तार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसकी संरचना क्रमिक है। पहले बायोइन्फॉर्मेटिक्स की उपयोगिता स्पष्ट करती है, फिर अनुक्रम डेटाबेस, एकल अनुक्रम विश्लेषण, समानता खोज, बहु अनुक्रम संरेखण, प्रोटीन संरचना, आरएनए और वंश वृक्ष जैसे कार्यों तक ले जाती है। यह पुस्तक किसी शोध पद्धति का गहन सैद्धांतिक ग्रंथ नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि यह जैविक प्रश्न को सही ऑनलाइन उपकरण, सही डेटा और परिणाम की सावधान व्याख्या से जोड़ती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जैविक प्रश्न को खोज योग्य अनुक्रम डेटा में बदलना। पुस्तक का पहला महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वह बायोइन्फॉर्मेटिक्स को केवल कंप्यूटर चलाने का विषय नहीं, बल्कि जैविक प्रश्नों को डेटा आधारित खोज में बदलने की प्रक्रिया के रूप में रखती है। किसी शोधकर्ता को किसी जीव में जीन ढूंढना हो, किसी प्रोटीन का संभावित कार्य जानना हो, या दो जीवों के संबंध की जांच करनी हो, आरंभिक चुनौती सही प्रकार की सूचना पहचानना है। लेखक इसीलिए न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन और जीनोम डेटा के बुनियादी भेद से शुरुआत करते हैं। डीएनए अनुक्रम अक्सर आनुवंशिक निर्देश का कच्चा संकेत देता है, जबकि प्रोटीन अनुक्रम कार्यात्मक समानताओं को समझने में अधिक सीधा सुराग दे सकता है। पुस्तक पाठक को यह विचार देती है कि किसी डेटाबेस में केवल नाम लिखकर खोज करना पर्याप्त नहीं होता। खोज की गुणवत्ता जीव का नाम, अनुक्रम का प्रकार, रिकॉर्ड की टिप्पणी और स्रोत सूचना देखने पर निर्भर करती है। यह दृष्टि खास तौर पर नए पाठकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जैविक डेटा में एक ही जीन के कई नाम, अधूरे रिकॉर्ड और अलग संस्करण हो सकते हैं। इस तरह पुस्तक इंटरनेट को तैयार उत्तरों का भंडार नहीं मानती, वह उसे ऐसे साक्ष्य स्रोत के रूप में प्रस्तुत करती है जहां प्रश्न की स्पष्टता, रिकॉर्ड की पहचान और परिणाम की जांच तीनों साथ आवश्यक है। दूसरा, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन डेटाबेसों का विवेकपूर्ण उपयोग। पुस्तक का दूसरा केंद्रीय विषय अनुक्रम डेटाबेसों को पढ़ना और उनकी सीमाओं को समझना है। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस डीएनए और आरएनए अनुक्रमों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हैं, जबकि प्रोटीन और विशिष्ट डेटाबेस किसी अणु के नाम, कार्य, संरचना, जैविक स्रोत और संबंधित साहित्य जैसी अलग स्तर की जानकारी दे सकते हैं। लेखक इस विभाजन को व्यावहारिक बनाते हैं, क्योंकि सही डेटाबेस चुनने से खोज का दायरा और निष्कर्ष दोनों बदलते हैं। उदाहरण के लिए, केवल डीएनए अनुक्रम मिलने से किसी जीन का वास्तविक कार्य निश्चित नहीं हो जाता, उसके संभावित प्रोटीन उत्पाद, संरक्षित भागों और अन्य जीवों में मिलते जुलते अनुक्रमों की जांच करनी पड़ सकती है। पुस्तक रिकॉर्ड के भीतर दी गई व्याख्यात्मक सूचनाओं को अनुक्रम जितना ही महत्वपूर्ण मानने की आदत विकसित करती है। यह उपयोगी सावधानी है, क्योंकि डेटाबेस में कुछ प्रविष्टियां प्रत्यक्ष प्रयोगों से समर्थित होती हैं और कुछ कंप्यूटेशनल अनुमान पर आधारित हो सकती हैं। पुस्तक ऐसे वेब संसाधनों को शुरुआती उपयोगकर्ता की पहुंच में लाती है, पर साथ ही संकेत देती है कि डेटाबेस स्थिर पुस्तकालय नहीं है, उनके रिकॉर्ड बदलते, सुधरते और बढ़ते रहते हैं। इसलिए परिणाम को उसके स्रोत, संस्करण और संदर्भ के साथ देखना जिम्मेदार विश्लेषण का हिस्सा है। यह कौशल आगे के हर अनुक्रम विश्लेषण की विश्वसनीय नींव बनता है। तीसरा, एकल अनुक्रम से समानता खोज और कार्य के संकेत तक। एकल डीएनए या प्रोटीन अनुक्रम के साथ काम करना पुस्तक की व्यावहारिक रीड है। लेखक पहले अनुक्रम को सही प्रारूप में पहचानने और उसकी मूल विशेषताओं को देखने पर जोर देते हैं। डीएनए अनुक्रम में संभावित कोडिंग क्षेत्र, दिशा और संबंधित अनुवाद की जांच की जा सकती है। प्रोटीन अनुक्रम में लंबाई, अमीनो अम्लों की रचना, संभावित संरक्षित खंड और समान प्रोटीनों से संबंध महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इसके बाद समानता खोज का विषय आता है। ऐसी खोज किसी नए अनुक्रम को ज्ञात रिकॉर्डों के साथ मिलाकर निकट या दूर के संबंधों का अनुमान देती है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि खोज परिणाम में सबसे ऊपर आए नाम को अंतिम उत्तर नहीं मानना चाहिए। समानता की मात्रा, मिलान का कितना भाग अनुक्रम पर फैला है तथा संबंधित रिकॉर्ड की जैविक व्याख्या को साथ पढ़ना आवश्यक है। छोटा किंतु बहुत समान खंड किसी साझा डोमेन का संकेत हो सकता है, पर पूरे प्रोटीन के समान कार्य का प्रमाण नहीं। इसी तरह डीएनए स्तर पर समानता और प्रोटीन स्तर पर समानता अलग प्रकार की जानकारी दे सकती है। पुस्तक शुरुआती पाठक को इस अंतर से परिचित कराती है। वह कार्य की भविष्यवाणी को प्रत्यक्ष प्रयोग का विकल्प नहीं बताती, बल्कि उपलब्ध अनुक्रम साक्ष्य से बना सावधान अनुमान मानती है। यह सीमा समझना गलत जैविक निष्कर्षों से बचने के लिए अत्यंत जरूरी है। चौथा, दो और अनेक अनुक्रमों के संरेखण से संरक्षित पैटर्न पहचानना। दो अनुक्रमों की तुलना और बहु अनुक्रम संरेखण पुस्तक में अलग महत्व रखते हैं, क्योंकि ये केवल समान अक्षर ढूंढने के औजार नहीं है। संरेखण यह अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि अलग अनुक्रमों के कौन से भाग साझा विकासीय मूल या साझा जैविक भूमिका से जुड़े हो सकते हैं। दो अनुक्रमों की तुलना किसी निकट संबंध, परिवर्तन या संभावित समक्षता का प्रारंभिक संकेत देती है। अनेक अनुक्रमों को साथ संरेखित करने पर वे स्थान उभरते हैं जो कई जीवों या प्रोटीनों में अपेक्षाकृत संरक्षित है। ऐसे स्थान अक्सर संरचना या कार्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पुस्तक संरेखण बनाने, उसे संपादित करने और प्रस्तुत करने की व्यावहारिक जरूरतों पर ध्यान देती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वचालित उपकरण का परिणाम हमेशा अंतिम नहीं होता। अनुक्रमों की अत्यधिक भिन्नता, अधूरे हिस्से, गलत चुने गए रिकॉर्ड या असमान लंबाई संरेखण को भ्रामक बना सकते हैं। इसलिए पाठक को जैविक संदर्भ के आधार पर परिणाम देखना पड़ता है। संरक्षित खंडों को अलग से समझना और संदिग्ध क्षेत्रों के प्रति सावधान रहना आगे कार्य अनुमान तथा वंशवृक्ष निर्माण दोनों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पुस्तक इस प्रक्रिया को शुरुआती स्तर पर सुलभ बनाती है, साथ ही वह यह स्पष्ट करती है कि रंगीन या साफ दिखने वाला संरेखण अपने आप में प्रमाण नहीं है। उसका अर्थ अनुक्रमों की गुणवत्ता और पूछे गए जैविक प्रश्न से तय होता है। अंत में संरचना, आरएनए और वंशवृक्ष में विश्लेषण की अलग सीमाएं। पुस्तक उन्नत विषयों को भी परिचयात्मक ढंग से शामिल करती है, विशेषकर प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना, आरएनए विश्लेषण और वंशवृक्ष निर्माण। प्रोटीन संरचना का अध्ययन अनुक्रम से आगे जाकर यह पूछता है कि अणु का आकार उसके कार्य, बंधन और सक्रिय स्थलों को कैसे प्रभावित कर सकता है। उपलब्ध संरचनात्मक रिकॉर्ड या समान प्रोटीनों के आधार पर मॉडल उपयोगी संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष संरचनात्मक प्रयोग के बराबर निश्चितता नहीं देते। आरएनए के मामले में अनुक्रम के साथ उसकी संभावित द्वितीयक संरचना और कार्यात्मक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे पुस्तक यह व्यापक बिंदु सामने रखती है कि सभी जैविक अणुओं के लिए एक ही विश्लेषण पद्धति पर्याप्त नहीं है। वंशवृक्ष निर्माण में संरेखित अनुक्रमों से संबंधों का अनुमान लगाया जाता है। लेखक इसे जीवों या जीनों के संभावित विकासीय इतिहास को व्यवस्थित रूप में देखने का साधन बनाते हैं। किंतु वृक्ष की शाखाओं को अपरिवर्तनीय इतिहास मान लेना उचित नहीं है। परिणाम चुने गए अनुक्रमों, संरेखण की गुणवत्ता और विश्लेषण पद्धति पर निर्भर करता है। जीन का वृक्ष हमेशा पूरे जीव का वृक्ष नहीं होता। इन विषयों को एक साथ रखकर पुस्तक पाठक को उपकरणों की शक्ति के साथ उनकी शर्तें भी सिखाती है। यही संतुलन इसे केवल निर्देशों की सूची से अधिक उपयोगी बनाता है। निष्कर्ष में बायोइन्फॉर्मेटिक्स फॉर डमीज उन छात्रों, प्रयोगशाला शोधकर्ताओं और जीव विज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है, जिन्हें अनुक्रम डेटा और ऑनलाइन जैविक संसाधनों की दुनिया में प्रवेश करना है। यह विशेष रूप से उन लोगों के काम आ सकती है जिनके पास जीव विज्ञान या कंप्यूटिंग का आंशिक परिचय है, लेकिन डेटाबेस रिकॉर्ड, अनुक्रम खोज और विश्लेषण परिणामों को जोड़ने का स्पष्ट ढांचा नहीं है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक जीन या प्रोटीन ढूंढने, एकल अनुक्रम का निरीक्षण करने, समानता खोज चलाने, संरेखण पढ़ने और वंशवृक्ष की बुनियादी व्याख्या करने के लिए एक कार्यक्रम सीखता है। बौद्धिक लाभ इससे भी महत्वपूर्ण है। यह सिखाती है कि कंप्यूटेशनल परिणाम को जैविक प्रमाण में बदलने से पहले उसकी गुणवत्ता, दायरा और सीमा पर विचार करना चाहिए। इसी कारण यह केवल किसी वेबसाइट के बटन दबाने की मार्गदर्शिका नहीं बनती। समान श्रेणी की अत्यधिक तकनीकी पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान वेब आधारित, चरणबद्ध और गैर प्रोग्रामर अनुकूल प्रस्तुति है। फिर भी इसकी ऐतिहासिक सीमा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संस्करण के समय के डेटाबेस, सर्वर और इंटरफेस बदल चुके होंगे। पाठक को इसके विश्लेषण सिद्धांत अपनाने चाहिए, पर वर्तमान संसाधनों और आधुनिक दस्तावेजों से उन्हें मिलाना चाहिए। गहरे सांख्यिकीय मॉडल, प्रोग्रामिंग आधारित पाइपलाइन या समकालीन उच्च क्षमता अनुक्रमण विश्लेषण चाहने वालों के लिए यह पर्याप्त नहीं होगी, लेकिन क्षेत्र की भाषा, मुख्य कार्यों और विवेकपूर्ण व्याख्या की मजबूत शुरुआत के लिए इसका स्थान स्पष्ट है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जीम मिशेल क्लावरी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।